नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संतोष कुमार झा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार का प्रदर्शन अच्छा, केंद्र सरकार ने की सराहना। मौसम विभाग ने कहा इस वर्ष देश में मानसून अच्छा रहेगा, बिहार में कम हो सकती है बारिश। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू करने में बिहार पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय में आज वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इधर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोच्चि में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि अनेक मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के समर्थन में आगे आए हैं। बिहार में विधानसभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में महिला सांसदों के मामलों में भी बिहार राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 8054 पंचायतों में निर्वाचित 136,576 जनप्रतिनिधियों में 71,086 महिलाएं हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का राष्ट्रीय औसत 46.26% है। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल से शुरू होगा। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस अभियान में 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के गांवों में एक साथ महिला संवाद का आयोजन किया जाएगा। महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत पटना जिले से की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति उनकी आकांक्षाओं की जानकारी ली जाएगी। उद्योग विभाग ने गया में टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 20 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को दी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से 200 करोड़ रुपए की लागत से गया के खिजरसराय अंचल में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना में उद्योग विभाग के निदेशक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त निदेशक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी मिशन के तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। आम और लीची की खेती के लिए 50% और केला तथा पपीता की खेती के लिए 75% अनुदान मिल रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि सिंचाई की नई तकनीकों के लिए सरकार किसानों को 80% तक अनुदान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को अग्निरोधी बनाने के लिए 21 से 25 अप्रैल तक सभी सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं की ओर से फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान अस्पताल कर्मियों को अगलगी की आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में किसानों को हर खेत पानी योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सितंबर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान संबंधित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पटना में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कहा कि इस योजना के तहत 1.5 लाख किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 2,38,000 से अधिक किसानों को कनेक्शन दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप पत्र की जांच की है और आगे की कार्रवाई के लिए इस महीने की 25 तारीख निर्धारित की है। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर 26 से 28 अप्रैल तक बेतिया में आयोजित होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस शिविर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जाएगी।
हमारी पार्टी का शिविर 26, 27 और 28 अप्रैल को होने जा रहा है। 3 दिनों का शिविर होगा, वहां बैठकर हम मंथन करेंगे आज के राजनीतिक विषयों पर। चुनाव का समय है, बिहार में चुनाव अब कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे।
श्रम संसाधन विभाग की ओर से पटना में 10 जून को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में उन युवाओं को शामिल होने का मौका मिलेगा जिन्होंने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। मेले में 35 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @EIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ सतही हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के अलावा पूर्वी और दक्षिण मध्य भाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है।
राज्य के अधिकांश जिलों के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों में मेघगर्ज वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है तथा राज्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।
इधर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस बार मॉनसून के दौरान जून से सितंबर तक देश में अच्छी बारिश के आसार हैं। श्री महापात्र ने बताया कि इस बार बिहार में मॉनसून की बारिश कम होने की संभावना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू करने में बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने PMFME योजना को लागू करने को लेकर बिहार के प्रदर्शन की सराहना की है। मंत्रालय के अपर सचिव मिनहाज आलम ने पत्र लिखकर बताया कि बिहार ने 2024-25 में इस योजना के तहत दूसरा सर्वाधिक संचयी प्रदर्शन किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान बिहार ने 11,000 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था जिनमें 10,270 योजनाओं को स्वीकृति मिली। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा के लिए बच्चों का नामांकन अब 22 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले नामांकन की तिथि 15 अप्रैल तक निर्धारित थी। शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रदेश के 5.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन कराना है। अब तक इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3.5 लाख बच्चों का नामांकन पहली कक्षा में किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 25 अप्रैल से होने वाली 70वीं मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों को 3 विषय में कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति दी है। आयोग ने कहा है कि सामान्य अध्ययन में साधारण कैलकुलेटर और गणित तथा सांख्यिकी विषय में साइंटिफिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर छूट होगी। इससे पहले परीक्षा में कैलकुलेटर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर रोक थी। पटना में एक बार फिर बर्ड फ्लू के 2 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत मरची गांव में लगभग 1,000 मुर्गियां बर्ड फ्लू से मर गई थीं। वहीं जिले के नेहरू पथ स्थित एक आवास में मुर्गियों के अचानक मरने की खबर के बाद सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है पशुपालन विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में एंटीवायर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। रेलवे ने रद्द की गई 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल किया है। इन ट्रेनों में दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस और दरभंगा जालंधर सिटी एक्सप्रेस शामिल हैं। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इन सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय ने एक साथ एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर और खेल कैलेंडर जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि 24 अप्रैल से सभी स्नातक स्तरीय विषय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं स्नातकोत्तर सहित वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए 2 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्नातक में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 23 मई और स्नातकोत्तर के लिए अंतिम तिथि 21 जुलाई निर्धारित की गई है। वहीं पटना विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार खेल स्पर्धाएं 8 सितंबर से शुरू होंगी। इधर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से खेल कोटे के तहत छात्र छात्राओं का दाखिला शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि इस बार जिस कॉलेज में जितनी सीटें हैं उन सीटों में 3% खेल कोटे के लिए आरक्षित होंगी। 4 से 15 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर प्रदेश में मशाल गौरव यात्रा शुरू हो गई है। मशाल गौरव यात्रा नालंदा और बेगूसराय में पहुंची है। ये यात्रा 2 मई तक जारी रहेगी। गौरव यात्रा के 3 रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेल के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार विधानसभा चुनाव पर राजद और कांग्रेस की पहली औपचारिक बैठक नई दिल्ली में। अखबार लिखता है, बिहार में राजद और कांग्रेस साथ लड़ेंगे। दैनिक जागरण ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में इस बार सामान्य से कम हो सकती है वर्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार का प्रदर्शन अच्छा, केंद्र सरकार ने की सराहना। मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष देश में मॉनसून अच्छा रहेगा, बिहार में कम हो सकती है बारिश। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू करने में बिहार पहले स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।